स्वतामगते धर्म ज्ञानादि विवेकः कलौ नष्ट दृशामेष पुराणार्को धनोदितः कृष्ण के स्वधाम अपने धाम उपगते वापस जाने पर धर्म धर्म ज्ञान ज्ञान आदि ही इत्यादि सह साथ कलौ कलयुग में नष्ट दृशाम जिन लोगों के दृष्टि से नष्ट हो चुकी है या जिन लोगों की दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनके ये सह ये सब पुराण अर्क सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण अधुना इस समय अदितः उदितः उदय हुआ है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विराम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही उदय हुआ है। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है जहां वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्रियों का नित्य भोग करते हैं। उनका नित्य धाम उनके अंतरंगा शक्ति के अभिव्यक्ति है जबकि भौतिक संसार उसकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं जिसे आत्म माया कहा जाता है या कहते हैं। और गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपने शक्ति आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं तथा उनका रूप नाम यश साज सामग्री धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता या तो वे या उनके द्वारा सत्य संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति। वही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पास में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। इनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने सोने अपने रक्षक का मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकतया ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रियों भोग में लगे रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता लेकिन वे ज्ञान विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्राप्त अंतर्गत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर का त्यागने के बाद कुकर या शुकर बनने के लिए भी तैयार हैं क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे और कलयुग में प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवद गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूल किया। इस भौतिक जगत के अपने इस भौतिक जगत से अपने प्राण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव को भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवतम ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है। दूसरे शब्दों में यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक अलोक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों का शरण लेना चाहिए। इसी से इसका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकता है। भगवत गीता भागवत आरंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है और वे अभिन्न है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथानितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनचैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानितं। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। माता जी कहाँ गई? बिल्ला माता जी।
माता जी अभी थोड़ा सेवा में है, माम भी का
हाँ, वहाँ पे है ना। हाँ, वो कोई ना कोई
रहता
आते हैं रोज बराबर बराबर। रविवार के दिन कम से कम सभी भक्तों को आना चाहिए मंदिर में, मंगल आरती में, खास करके क्लास में। इधर ना हुई, बहुत सारे लोग रहते हैं, भक्त लोग कोई नहीं आता। जब तक मंदिर नहीं आएंगे
अभी तक भक्ति नहीं होता है।
निश्चित रूप से नहीं है। कई उदाहरण हमने देखे हैं पिछले 8 सालों में जब से इस्कॉन में आए। जो व्यक्ति जितना जुड़ा हुआ है मंदिर से वो व्यक्ति उतना धपाधप प्रगति कर लिया, प्रोग्रेस किया है। बहुत चीज़ों को जाना, इस्कॉन के बारे में, भक्त के बारे में, भागवत के बारे में, ग्रंथों के बारे में बहुत परिचय हुआ। और जो लोग ऐसे ही नहीं आते हैं वो 8 साल पहले भी वो 16 माला जप करते थे, अभी भी 16 माला तो कर रहे हैं, मगर बस उतना है, बस विशेष को जैसे नॉलेज नहीं होता है। प्रभुपाद कहते हैं उपदेशामृत में एक जगह कि
चौदह
मैंने मंदिर इसीलिए बनाया हूँ, वो एक श्लोक है उपदेशामृत में, दधाति प्रतिपुन्ना गृह आख्याति भोजय सर्विधि प्रतिलक्षणम। जो 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण है भक्तों के बीच में होना चाहिए, देना, लेना, खिलाना, खाना, पूछना, बताना, ये चीजें ठीक तरीके से करने के लिए मैंने मंदिर बनाया। सब जगह मंदिर ऐसी जगह है कि सभी लोग वहां पे आओगे और एक दूसरे से मिलोगे और अपना भक्ति में प्रगति करोगे, इसलिए मंदिर कहते हैं। और नहीं आएंगे तो वैसे ही रहते, इसीलिए मेच्योरिटी कम होता है भक्तों में। और जो डिवोटी जितना ज्यादा वो मंदिर से मिलते, मंदिर से मिलना मतलब भक्तों के साथ मिलना और भगवत कथा सुनना और प्रगति करना, ये उद्देश्य है मंदिर का, बिल्डिंग का उद्देश्य नहीं है। और जो जितना भक्तों से मिलते उतना प्रगत रहते हैं, ये स्वाभाविक है क्योंकि वो ज्यादा सीखेंगे। अलग रहते हैं तो कितना बहुत सारा भले ही भागवत को भी जान ले, मगर वो एक उदाहरण हो प्रियतम को बता रहे थे, एक लड़का तो पहले मंदिर आया था रुकने के लिए, बाद में रुका नहीं, और उसको थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई बहुत मालूम था उसको भागवत भागवत, भी अलग से वो मंदिर इस्कॉन से चला गया और बाद में भागवत कथा करता। अब क्या और उसका पूरा इंटेंशन कैसा, 50,000 1 लाख खर्चा करेगा पटाल करके प्रिपेयर करके अच्छे से कथा करेगा तो उसमें से उसको 2 लाख रुपया आना चाहिए, 3 लाख रुपया आना चाहिए, और पूरा जो इंटेंशन है वो ऐसे बदल गया है। तो वो कुछ फायदे का नहीं है, वो दिखाने के लिए झोली लेके घूमेंगे, तिलक लगाएंगे, लेट उठना, ये सारी चीजें क्या होता है, वो जो भक्ति का जो मूल उद्देश्य है उसको छोड़ के वो बाकी लोक रंजन के लिए यार लो सस्ता ये प्रेस्टीज के लिए वो सब करेंगे। और अपने अंदर रह के भी अगर मंदिर नहीं आएंगे तो अपना प्रगति ऐसे ऐसे लटका लटका ही चलेगा, इसलिए व्यक्ति को समझ कर मंदिर आना चाहिए तभी प्रगति होगा, नहीं तो नहीं। आज का जो श्लोक है असलत में, आज 43 लेना था ना, आज 43 हो गया था, ये वाला हो गया था कल। अच्छा
दस बजे बड़ा उससे पहले 42 41 फिर भी थोड़ा समझाइए,
हाँ
वो भी 10 बजे बड़ा
तो
है।
आज इसको 44 भी करके खत्म कर देते हैं, 44 तक का
हाँ
ये अध्याय है ना,
3 से 10 महीने तो उसका थोड़ा
वही
बताइए।
वो एक से लेके 4 तक,
उसमें खाली सात
चौवालीस
महीने खाली पड़ा था, उसमें तो
चौवालीस
कुछ नहीं
तक
किया।
बता देते हैं। तो आप सबको मालूम है कि उस दिन जब पूछ रहे थे ना आप लोग, वो कहाँ गया वो धर्म है कि नहीं, ये वही श्लोक है, सीधा सीधा श्लोक है। वहां पे जो ऋषि मुनियों ने सुत गोस्वामी जी को प्रश्न पूछा था, 6 प्रश्न, उसमें अंतिम प्रश्न क्या था कि महाराज जी बताइए कि भगवान जाने के बाद धर्म किसका शरण लिया था, वो बताइए। तो 40 नंबर श्लोक तक सुत गोस्वामी ने नमिषारण्य के ऋषियों को 5 प्रश्नों का जवाब दे दिया लगभग, ऐसे सब में बता दिया सब कुछ, अवतार भी बता दिए, भगवान क्यों आए बता दिए, और लोगों के लिए कल्याणकारी क्या है वो बता दिए, सब कुछ सबकट में बतला दिया उन्होंने। ये एक प्रश्न छूटा था, इसलिए 41 नंबर श्लोक से उन्होंने इस भागवत का गुणगान करना चालू किया है कि नहीं, भागवत का महत्व कितना है इस संसार में हम लोग के लिए, और खास करके कैसे व्यक्ति से भागवत सुनना चाहिए है कि नहीं। जैसे हम वैष्णव सदाचार के क्लास में चर्चा कर रहे थे, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनना चाहिए ना। आप मंगल गुरुवार भी नहीं आए थे ना, गुरुवार शुक्रवार बाहर गए, तो गुरुवार शुक्रवार हम लोग वैष्णव सदाचार पढ़ते हैं सब लोग, हम लोग मिलकर क्लास जैसा नहीं पढ़ाई का मतलब, किताब को पढ़ते हैं यहाँ बैठे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनना चाहिए, स्वरूप सिद्ध मतलब मैंने क्या बताया था, हाँ जो व्यक्ति अपने को और भगवान को पहचान लिया है ना, उसके स्वरूप के बारे में जिसको प्राप्त हो पता चल चुका है उसको स्वरूप सिद्ध कहते हैं, उच्चे कोटि के वैष्णव, ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए। ये सारे चीजें जो ना इन श्लोकों में प्राप्त होते हैं, उतना जानकारी मिलता है। आज के श्लोक जो है 43 नंबर श्लोक, ये सूत को नैमिषारण्य के ऋषियों का जो अंतिम प्रश्न का सीधा सीधा जवाब है, सीधा जवाब है ना, प्रश्न धर्म कृष्ण के जाने के बाद धर्म किसके शरण में लिया, सीधा जवाब कृष्ण जाने के बाद धर्म और भागवत का शरण लिया, सीधा जवाब है। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, भगवान कृष्ण ने धर्म ज्ञान इन सारे चीजों के साथ आदि भी ही सह साथ में स्वधाम उपगते, अपने धाम को जब भी चले गए कृष्ण ने, कलौ नष्ट दृशामेश, कलयुग में जो जिन लोगों की बुद्धि मारी जा चुकी है या जिन लोगों का दृष्टि खत्म हो चुकी है, जिन लोगों ने अंधे हो चुके हैं कलयुग के वजह से, उन लोगों के आंख को प्रकाश प्रदान कौन करेगा? भगवान। अर्थात अभिधर्म किसका शरण लिया? भागवत। कलयुग के लोगों के लिए केवल एक ही आलोक है या एक ही लाइट है, वो है भागवत। लाइट ऑफ भागवतम, प्रभुपाद ने पहले एक ग्रंथ लिखा था, सबसे पहले लाइट ऑफ भागवतम करके यहाँ पे रहेगा, भागवत का प्रकाश ऐसे एक ग्रंथ रहेगा उसका ऑडियो भी। ये कलयुग के लोगों के लिए है, ये इस बेस पर, इस श्लोक के बेस पर वो किताब है। कलयुग के लोगों को समझना चाहिए कि इस संसार में ये जो कलयुग का प्रभाव इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है, इन सारे कलयुग के प्रभावों को रोकने के लिए, युग धर्म का प्रचार स्थापना करने के लिए केवल भगवान ही सक्षम है। नहीं तो उनके द्वारा शक्ति संचारित कोई एक व्यक्ति, भगवान नहीं तो भगवान के कोई एक व्यक्ति जिनका उनके द्वारा संचारित किया हुआ। अभी भगवान ने द्वापर युग में आए, कुछ लीलाओं को किए, खास करके भगवत गीता जैसा ज्ञान प्रदान किए और फिर चले गए। चले जाने के बाद जिन जिन कार्यों को भगवान कृष्ण ने किए थे, और जिन जिन व्यक्ति स्थान चीजों के प्रति उनका संबंध था, इन सारे चीजों को उन्होंने, ये व्यास देव जी, नारद मुनि को क्या किया? शक्ति दिया। नारद मुनि ने जाके व्यास देव जी को समझाया, व्यास देव जी ने उसको लिख डाला भागवत के रूप में। तो ये तो ठीक है, श्री कृष्ण की लीलाओं का लिखे। श्रीमद् भागवतम, कृष्ण के जाने के बाद ये स्वयं कृष्ण है। व्यक्ति को भगवान के शरण में जाना और श्रीमद् भागवत पढ़ना दोनों एक ही है। जितना देर व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है, व्यक्ति उतना समय भगवान की शरण में है, उनकी शरण क्षण में है। मैं पिछली बार आप लोगों को बताया था कि राधा गोविंद स्वामी महाराज जो वृंदावन में रहते हैं ज्यादातर, उन्होंने अपने जीवन में भागवत का शरण का कभी नहीं छोड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको इतना बहुत बड़ा बीमारी हुआ जो पैरालिसिस, तब पर भी उन्होंने भागवत कथा करते थे, भागवत को पढ़ते थे, हालांकि बोलने नहीं हो रहा था, तब पर भी श्रीमद् भागवत तक पढ़ते थे और उसकी कथा करते थे, भागवत का शरण लेने। उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछेंगे तो उन्होंने एक ही जवाब देते हैं, भागवत पढ़िए सब ठीक हो जाएगा। अर्थात आप भागवत का शरण लीजिए, भगवान कृष्ण का शरण लीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम मतलब वो स्वयं कृष्ण है, उनका शरण लीजिए। और कलयुग के लिए यही एक बसमात्र उपाय है प्रकाश प्रदान करने के लिए। क्या है उसका अर्थ, भागवत का शरण लेना मतलब? अपने तात्पर्य में बतलाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ये दोनों ग्रंथ कलयुग के लोगों के लिए प्रकाश प्रदान करता है। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? श्री भगवान के द्वारा दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस है कि नहीं, हमारे लिए शिक्षाएं हैं। क्या शिक्षा दिया भगवान ने उसमें? बोला कि देखो भाई, सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य कौन हो? ये भगवत गीता है। सारे वैदिक ग्रंथों के जो ज्ञान है, उस ज्ञान का सार वो गीता में रखे हैं। सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूं, ये भगवत गीता है। सर्व उपनिषद गाव दुग्ध गोपाल नंदन पार्थो भक्त सुधीर भक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। सारे उपनिषद अगर गाय सदृश होंगे तो उनके सार रूप में ये गीता है कि नहीं? ये शंकराचार्य कहते हैं ये भगवत गीता। भगवत गीता एक व्यक्ति के लिए श्रीमद् भागवतम का इनिशियल स्टडी है, आरंभिक अध्ययन। श्रीमद् भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है भगवत गीता। कोई भी विद्वान साहब जाके मिलिए, वो पहले श्रीमद् भगवद गीता को अध्ययन करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा श्री भगवान की जो पदवी है हम उसको पहचानते हैं, फिर हम उनकी लीलाओं को श्रवण करना चाहिए, तब हमें उनकी दिव्यता जो है वो पता लगेगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जब कभी भी भागवत पढ़ने की बात आता है, जितना भी श्लोकों में आप कई बार अभी देखे रहेंगे, आज के श्लोक में भी है कि नहीं, जब भी भागवत पढ़ने की बात आता है वहां पे पहले बोलते हैं कि गीता पढ़ो, पहले गीता पढ़ो फिर आप भागवत पढ़ना चाहिए। ये गीता इनिशियल स्टडी ऑफ भागवतम, श्रीमद् भागवतम का ये प्रारंभिक अध्ययन मात्र है गीता। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले गीता का अध्ययन करना चाहिए, फिर जाके श्रीमद् भागवतम को स्पर्श करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं किस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि गीता या भागवत को, गीता या भागवत को एक यह है कि केवल व्यक्ति इसको सुनता है या केवल ऐसे पलट के पढ़ता है तब पर भी उसको उसका फायदा तो जरूर होगा ही, फिर भी व्यक्ति को चाहिए कि श्रीमद् भागवतम के हरेक श्लोका को, हरेक शब्दों को सही तरीके से समझते हुए और उसको मनन करते हुए, याद करते हुए और साथ साथ में अपने जीवन में उसको उतारते हुए अध्ययन करना चाहिए, ये उसको प्रोसेस है। श्रीमद् भगवद गीता की पहला अध्याय की पहला श्लोक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, तात्पर्य में एक स्टूडेंट को या एक व्यक्ति को चाहिए कि भगवद गीता का विश्लेषणात्मक अध्ययन करे, अर्थात एक ज्ञान पूर्वक श्लोकों को शब्दों के साथ समझते हुए पढ़े, और समझते हुए कैसे, अपने पांडित्य को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, उसको खुद समझकर अपने जीवन में सबसे पहले उतारने की उद्देश्य से हमको श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, ये श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताने के लिए प्रयास करते हैं। श्री प्रभुपाद जस्ट एज डायरेक्टर इन द कलयुग द पॉपुलेशन इन जस्ट रॉयल एडिशन ऑफ द एनिमल्स दे हैव नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअल नॉलेज और गॉडली रिलीजियस लाइफ दे आर सो ब्लाइंड they cannot see anything beyond the jurisdiction of the subtle mind, intelligence and ego. But they are very much proud of their advancement in knowledge, science and material prosperity. They can risk their lives to become a dog or horse just after leaving the presence of the body, or for they have completely lost sight of the ultimate aim of the life. Prabhupada ji ne ये कलयुग के लोगों के बारे में कहते हैं, कलयुग के लोग जो है ना रॉयल एडिशन ऑफ द एनिमल्स, पशु है थोड़ा सा उसमें क्या ऐड हुआ है, रॉयलिटी थोड़ा ऐड हुआ है, मतलब सोफिस्टिकेटेड वे में खान पान रहन सहन करते हैं। तो बात कहते हैं आध्यात्मिकता के बारे में जानने के लिए बिल्कुल ही आलसी है, उनको कुछ पड़ी नहीं है धर्म के बारे में, आध्यात्मिक के बारे में कुछ पड़ी नहीं है भौतिकवादी लोगों को, बस उन्होंने अपने ज्ञान, भौतिक ज्ञान और विज्ञान के प्रति बहुत अहंकार है उसके वजह से, और मैक्सिमम मन बुद्धि और अहंकार तक ही वो समझते हैं, उसके आगे कुछ समझते ही नहीं है। अपना शरीर और अपना मन और अपना अहंकार वहां तक वो समझते हैं, उसके आगे कुछ है करके उसके बारे में विचार भी नहीं करते हैं लोग। पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड श्री कृष्ण अपीयर्ड बिफोर अर्जुन अ लिटिल प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ द कलयुग एंड ही रिटर्न टू हिज इटर्नल होम प्रैक्टिकली एट द कमेंसमेंट ऑफ कलयुग व्हाइल ही वाज प्रेजेंट ही exhibited everything by his different activities. He spoke the Bhagavad Gita specially and re-dedicate all pretentious principles of religiosity. And prior to his departure from this material world, he empowered Srila Vyasadeva through Narada to compile the message of Srimad Bhagavatam एंड बोथ ऑफ द भगवद गीता एंड श्रीमद भागवतम आर लाइक टॉर्च टॉर्च फॉर द ब्लाइंड पीपल ऑफ दिस एज. भगवान ने अपने लीलाओं को किए और उन्होंने वापस गए, मगर तब उन्होंने क्या किया, नारद मुनि को संचारित किया कि उन्होंने उस ज्ञान को जाके, नारद मुनि ने इस ज्ञान को किसे दिया, व्यास देव जी को. व्यास देव जी ने भगवद गीता भागवतम जैसे ग्रंथों को उन्होंने लिखा. कलयुग के लिए यह गीता और भागवतम दोनों टॉर्च जैसा है, कलयुग के अंधे लोगों के लिए ये उनको सही मार्ग बता सकता है. इसलिए हमें चाहिए कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसको भागवत का शरण लेना. तो भागवत शरण कैसे लेना चाहिए, पहला है उसको गीता समझना, फिर भागवत को समझना, और वो भी ये गीता और भागवत एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से समझना. तो उस दिन प्रश्न उठा था, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ऐसा कौन है जिससे हम सुनेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत आसान है कि हम सीधा सीधा किससे सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ रहे हैं. तो प्रभुपाद जी एक ऐसे डिवोटी है भगवान श्री कृष्ण के, जिसके मुखारविंद से अगर हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, निश्चित रूप से हमारा हृदय परिवर्तित होगा. पहले वाले श्लोकों में 41 और 42 41 और 42 नंबर श्लोक में व्यास सूत्र गोस्वामी भागवत का गुणगान करते हैं, और यहाँ पे उनके छठा प्रश्न का जवाब देते हैं, और 44 नंबर श्लोक में खत्म करते हैं अध्याय को. क्या बोल के खत्म करते हैं, ये श्रीमद भागवतम जो नारद मुनि ने व्यास देव जी को दिया, जो व्यास देव जी ने अपना लड़का सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया बिना खाए बिना सोए, बिना खाए बिना सोए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भरी सभा में सुनाया, जहां पे अनेकों अनेकों मुनि ऋषिगण उपस्थित थे. वहां पे मैं भी था, सुख गोस्वामी कहते हैं वहां पे मैं भी था, और मैं ये पूरा चीज को सुना हूं. अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आप उसको ध्यानपूर्वक सुनो. ये होता है गुरु शिष्य परंपरा. मैंने मेरे गुरु जी से सुना, मेरे गुरु जी ने उनके गुरु जी से सुना, और वो गुरु जी उन्होंने उनके गुरु जी से सुना. इस प्रकार से वो कहां से आना चाहिए, कृष्ण से आना चाहिए. उसको कहते हैं प्रामाणिकता, प्रामाणिक परंपरा. ये गुरु शिष्य परंपरा को बताते हैं. I learned the Bhagavatam from a great and powerful sage. Now I shall try to make you hear the very same thing as I learned it from him and as I have realized it. मैं उनसे सुना हूँ और उनसे उसको जिस प्रकार से मैं हृदयंगम किया हूँ, realize मतलब हृदयंगम, मैं कितना उसको हृदयंगम किया हूँ, उस चीज को अभी मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं, आप अभी सुनो उसको. ये गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताते हैं. He then speaks the final text of the first canto, third chapter, the beginning of Srila Prabhupada's purpose strongly informs us from whom we should hear Srimad Bhagavatam. प्रकार से उन्होंने अंतिम श्लोक बताया. तो प्रभुपाद ने इस चैप्टर की, इस अध्याय के प्रारंभ से एकदम स्ट्रांगली कहते हैं कि कैसे व्यक्ति से हमको श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए. One can certainly see directly the presence of the Lord Sri Krishna in the pages of Srimad Bhagavatam. If one has heard it from a self-realized great soul like Sukadeva Goswami, one cannot, however, learn Srimad Bhagavatam from a bogus or bogus reciter whose aim of life is to earn some money out of such recitation and employ the earning in sex indulgence. हमें सुखदेव गोस्वामी जैसा एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रीमद भागवतम को सुनना चाहिए. हमें हमेशा ऐसे लोगों से सुनना, दूर रहना चाहिए जिन लोगों ने श्रीमद भागवतम का पाठ करते हैं बस कुछ पैसों के लिए. ऐसे कई लोग होते हैं, आप देखेंगे अभी किसी किसी के पिताजी का, माँ का, वो उनके परिवार क्या वो परंपरा का उद्धार के लिए वो लोग भागवत कथा कराते हैं। वो भागवत कथा मीन्स सिंपल रिसाइटर ऑफ श्रीमद भागवतम, वो भागवत को आके पढ़ेगा वहां पर। कुछ होते हैं डायरेक्ट श्रोताओं को खाली पढ़ेंगे, और कुछ होते हैं उसको पढ़ के बताएंगे भी लोगों को। तो ये सब उन लोगों का उद्देश्य क्या है कि उन्होंने कथा के लिए बुलाया तो उन्होंने क्या उनको वो देना है कि नहीं। हाँ, उन्होंने नक्की करेंगे इतना पैसा लेके हम कथा करेंगे, हमारे कथा इतना मूल्य होता है। श्रीमद् भागवत के जो अमूल्य ग्रंथ है और ये जो अद्वितीय ज्ञान है, इसका कोई मोल नहीं लगाना चाहिए व्यक्ति को। इस प्रकार से मोल लगा के व्यक्ति अपना मूर्खता को व्यक्त करता है। ऐसे व्यक्ति वो अपना उस पैसे को लेके करेगा क्या, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस एंजॉयमेंट में लगाएगा। इस प्रकार की व्यक्ति के मुखारविंद से अगर हम सुनेंगे, हमें कभी भी हमारे हृदय में भागवत प्रकट नहीं होगा। हम हमेशा स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों से ही श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए, जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त होते हैं, तभी जाके हमारे हृदय में श्रीमद् भागवत प्रकट हो सकता है या हम उसको समझ सकते हैं। नो वन कैन लर्न श्रीमद् भागवतम हुई एसोसिएटेड विद पर्सन एंगेज इन लाइफ, दैट इज द सीक्रेट लर्निंग भागवतम। जो व्यक्ति मैथुन इत्यादि कार्यों में ज्यादातर लगा हुआ रहता है, इस प्रकार के व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम नहीं सुनना चाहिए। जो व्यक्ति बैरागी है, ऐसे व्यक्ति और खास करके श्री कृष्ण की सेवाओं में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम हमें सुनना चाहिए। नॉर कैन वन लर्न श्रीमद् भागवतम फ्रॉम वन हु इंटरप्रेट्स टेक्स्ट बाय हिज मंचिंग फिलोसॉफ स्कॉलरशिप, और ना ही ऐसे व्यक्ति से जो अपने मन बुद्धि को उस श्लोकों को समझाने में लगाता है। आचार्य ने कुछ और बोला, भागवत में सुखदेव गोस्वामी उद्देश्य कुछ और है, और इसने लोगों के सामने लोगों को मजा लेने के लिए वो उसमें कुछ अनुवाद और उल्टा सीधा करता है। ऐसे लोगों से भागवत नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि भागवत कथा का जो भागवत कथा करते हैं, जो जो ऐसे कुछ कड़क कड़ुआ शब्द उसमें रहता है, कड़ुआ शिक्षा है, वो लोगों के सामने ज्यादातर प्रस्तुत नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे बोलने पर जो है ना लोग उनकी कथा में नहीं आएंगे, उसके डर के कारण वो ऐसा नहीं बोलेंगे, या फिर से उनको कोई बुलाएगा नहीं ऐसे डर से ना। जो रियल भागवत का व्याख्या समझने वाला व्यक्ति है, वो भी ऐसे है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा हर परिस्थिति में, वो जो सिद्धांत है उसको कभी भी तोड़ेगा नहीं। इस प्रकार के व्यक्तियों से हमको श्रीमद् भागवतम को समझना चाहिए, और इस श्रीमद् भागवतम जो है स्वयं भगवान का स्वरूप है। जैसे मैं पिछली बार आप लोगों को बताया था, दो प्रकार की भागवत होते हैं, एक होते हैं भक्त भागवत और एक होते हैं ग्रंथ भागवत। ये ग्रंथ भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो साहित्य के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। हम जितना अल्टर में स्थित भगवान का रेस्पेक्ट देते हैं या पूजा करते हैं, वैसे इन ग्रंथों को भी हमें सम्मान करना चाहिए, तभी जाकर हमारे हृदय में वो जो ज्ञान है श्री कृष्ण को समझने की, वो उद्रेक हो सकता है। एवं हमारे जो कम बुद्धि है, उस बुद्धि को लगाकर अगर हम समझने के प्रयास करेंगे तो असलियत में नहीं समझेगा, क्योंकि एक पिछले बार क्लास में रहे होंगे है ना, कूड़ा वो बता रहे थे ना, भागवत को समझने के लिए बहुत बड़ा स्कॉलर होना या बहुत पढ़े लिखे होना, इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी भागवत को समझ सकता है, उसकी भक्ति के द्वारा, श्री कृष्ण की कृपा के द्वारा, है कि नहीं। हाँ, वो अपने अपने एक्सपर्टिस से नहीं समझ सकता है, वो कितना एक्सपर्ट है पढ़ने में, कितना याद करने में, वो सबसे भागवत नहीं समझाया जाता है। मैं भी एक बार ऐसा अनुभव भी हुआ है। एक एक मेरा दोस्त है, उन्होंने भक्ति शास्त्री करने के बाद संस्कृत पढ़ने के लिए उन्होंने गए, कई 2 4 साल कहीं रह के संस्कृत पढ़ाई करके पूरा संस्कृत पढ़ के सीख लिए। बाद में वो कहीं गए थे तो बीच में मुझे मीरा रोड में क्लास देना था, तो मुझे एक श्लोक का जो है वो हमारे आचार्यों के ग्रंथ जो है ना संस्कृत में, तो मैं उसको पूछा उस श्लोक को फोन करके, मतलब ये पढ़ रहा हूँ उसको अनुवाद करो। मैंने उनको संस्कृत में पढ़ के सुनाया और उनको अनुवाद करने के लिए बोला, और उन्होंने बोला कि वो ये तो मुझे नहीं, एकदम से नहीं आ रहा, फिर भी मैं मेरे गुरुजी को पूछता हूँ। वो अपने गुरुजी जो संस्कृत जानते हैं उनको पूछा, वो बहुत बड़े विद्वान है, और उन्होंने अनुवाद बताया। जो अनुवाद की प्रभुपाद जी के सिस्टम से एकदम बाहर है, मतलब भागवत की मूल तत्व को ही खत्म कर रहा हो, उसका उस अनुवाद का उस श्लोक से कोई लेना देना ही नहीं है। हो सकता है वो सही अनुवाद किया हो शब्दों का, मगर वो सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं कर रहा था। तब मैंने एकदम से नक्की किया कि केवल ज्ञान से भागवत को व्यक्ति नहीं समझ सकता है, संस्कृत जानने से व्यक्ति भागवत को नहीं समझ सकता है। गुरु कृष्ण की कृपा के बिना और भक्ति के बिना भागवत को व्यक्ति समझ सकता नहीं समझ सकता। अगर व्यक्ति अंगूठा छाप भी है, संस्कृत का एस अक्षर नहीं मालूम है कि नहीं, मगर श्री कृष्ण की कृपा है तो श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता का जो सिद्धांत है वो निश्चित रूप से उसको समझ में आएगा। व्यक्ति का निष्ठा और प्रयास को देख के श्री कृष्ण उनके ऊपर कृपा करते हैं, उसके द्वारा ही हम श्रीमद् भागवतम को समझ सकते हैं। हाँ, हमारे खुद की एक्सपर्टीज हम नहीं समझ सकते श्री कृष्ण की इस भागवत को, इसलिए हम सबको चाहिए कि प्रतिदिन इस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। ऐसा नहीं कि केवल 7 दिन ही करें, सप्ताह में ही करेंगे, 7 ही दिन करेंगे, ऐसा नहीं। या 7 दिन में 1 दिन आएंगे, ऐसा भी नहीं। नित्यम भागवत सेवया है कि नहीं, सुखदेव गोस्वामी क्या सुख गोस्वामी क्या कहते हैं, नित्यम भागवत सेवा, प्रतिदिन भागवत की सेवा होना चाहिए। और भागवत की सेवा मतलब भागवत की श्लोकों को पढ़ना और उसको समझना, ये उसकी सेवा है कि नहीं। प्रसाद की सेवा मतलब प्रसाद को प्रेम पूर्वक स्वीकार करना, वो प्रसाद की सेवा है। भगवान की सेवा मतलब उनका अर्चन करना, मंदिर साफ करना, ये सेवा है। भागवत की सेवा मतलब भागवत का अध्ययन करना, ये सेवा है। इसलिए हम सभी भक्तों को चाहिए कि प्रतिदिन भागवत का अध्ययन करें, हाँ, उसको समझने के लिए प्रयास करें, भागवतम क्लास अटेंड करें। अगर हम जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम प्रवचन अटेंड करते हैं मंदिरों में, निश्चित रूप से बाकी लोगों से सबसे पहले उसका प्रगति होगा, और निश्चित रूप से उसका प्रगति होगा, क्योंकि प्रतिदिन वो भागवत सुन रहा है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की शिल प्रभुपाद की निकाय गौर प्रमाण अंत में प्रभुपाद तात्पर्य में इस बात को भी लिखते हैं कि जो भागवत को देखता है मतलब वो कृष्ण को देखता है। भागवत को देखना मतलब कागज और बाइंडिंग किया हुआ ग्रंथ नहीं, वो भागवत उसको देखता है।